चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुदकेवलीभणिदम्। ये कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार और उसकी 44 नंबर की गाथा अपनी चल रही है और इसके ऊपर दिए हुए स्वामी जी के जो प्रवचन है, प्रवचन रत्नाकर भाग 3 के हम 26 नंबर के पृष्ठ पर आए हैं। अभी यह हमने देखा है कि जो इनके पहले जो 4-5 जो गाथाएं आई थी उसमें अन्य अन्य जीवों की जो गलत गलत मान्यताएं हैं उसकी बात 8 प्रकार की मान्यता हमें बताई और इसके सिवा अन्य भी बहुत है। तो यहाँ जो 8 मान्यता है, जो यानी मिथ्या मान्यताएं हैं, उनका यहाँ निराकरण किया है और सो निराकरण करने के लिए 3 बातें बताई थी उन्होंने। मिली भाई याद है आपको? 3 बातें बताई कि जिस पर से ये बातें गलत है ऐसा साबित करते आए हैं। अभी तक तो 2 बोल हमने देखे थे। दीपेश भाई जानते हैं आप? हाँ हाँ बहुत अच्छा। कि तीसरा क्या बताया? स्वानुभव। मैं समझा अनुमान बोल रहे क्या। बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो देखो, ये 3 बातों के बलबूते पर ये बात समझा रहे कि इनकी मान्यता सही नहीं है। मूल बात तो ये है, आगम में भी लिखा है, यानी जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा ही बताया है और युक्ति यानी न्याय से हमने जो कुछ सिद्धांत सीखे है उसके माध्यम से भी यही बात नक्की होती है। और जो जो जीवों ने इस आत्मा का अनुभव किया है उनके अनुभव में आप जो कहते वो बात आई नहीं है, उससे भी जुदी बात यानी जुदा जुदे प्रकार का आत्मा उनके अनुभव में आया है, इस तरह से उनको हम रूल आउट किया गया। ये देखें हम 26 नंबर के पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, वहां लिखा है त्रिजो बोल। अब ये तीसरे बोल में क्या लिखा है देखें, पेज नंबर कौन सा है बेन आपका? 260। त्रिजो बोल लिखा है, तीव्र मंद अनुभव थी भेद रूप थता दुरंत राग रस्ती भरेला अध्यवसानोनी संतति पान जीव नथी, कारण के ते संतति थी अन्य जुदो चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों वड़े स्वयं उपलब्धमान छे, अर्थात ते वो तेने प्रत्यक्ष अनुभवे छे, जुदा है ऐसा उन्होंने अनुभव किया है। जो भगवाने आम कहूं छे युक्ति थी पन एमज सिद्ध छे, अने तीव्र मंद रागनी परंपरा एटले संतति थी जुदो अन्य चैतन्य स्वभावमय जीव भेद ज्ञानियो प्रत्यक्ष अनुभवे छे। यहां ये बता रहे हैं कि किसी को तीव्र या किसी को मंद ऐसा राग रूप आत्मा है ऐसा उन्होंने जाना है, यह अध्यवसान जो है उस रूप आत्मा है ऐसा उन्होंने समझा है माना है। तो कह रहे हैं कि ये 3 बातों से वो बात खोटी ठहरती है। एक तो कह रहे हैं कि भाई जिनेंद्र भगवान ने जो बात बताई वैसा वो आप जो समझ रहे वो जुदी है, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा नहीं बताया। युक्ति से भी हम सिद्ध करते हैं कि ये बात गलत है और ये बात सच्ची है। और तीसरा कहते हैं कि जो भेद ज्ञानी ऐसे जो जीव है, सम्यक दृष्टि का कहो या साधक जीव कहो, उन्होंने जो आत्मा का अनुभव किया है उनके भी अनुभव में आप जो कहते हैं उससे भिन्न प्रकार का आत्मा अनुभव में आया है। अज्ञानी ने अनादि थी तीव्र मंद रागनी संतति नोज अनुभव छे, तेमा जे मंद राग छे तेथी पोताने कायक लाभ छे एम ते माने छे, पन भाई एना थी जराय लाभ नथी। राग भाव जो है उस राग भाव से कभी कभी मंद राग हो जाता है तो ऐसा मानते कि ये हमें बहुत फायदेमंद है, तो कहते उससे बिल्कुल फायदा नहीं है। मंद राग तो अभी देखो कितनी बढ़िया बात बता दे, मंद राग तो अभविने थे, मंद राग तो अभविने पण थाय छे। आपको मालूम है ऐसा मैक्सिमम मंद राग वाला कोई अभव्य पहचान का है आपके? हाँ डॉक्टर, हाँ और थोड़ा सा आगे जाके आपने सही बताया, ये जो द्रव्यलिंगी मुनि है वो अभवी भी नवे ग्रह तक जाते, वहां तो मंदराग वाली होते ख्याल में है ना। पहले उनके मंदराग थे इसलिए तो उनको वहां का स्वर्ग मिला है। तो यहां क्या समझा रहे कि मंदराग तो अभवीने पण थाय छे, मिथ्यात्मनी मंदता अने अनंतानुबंधी कषायनी मंदता तो अभवी जीवने पण होय छे, पण मंदराग ए कई वस्तु एटले आत्मा नथी। देखो यहाँ पर एक बात बिल्कुल थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि स्वामी जी कभी भी आत्मा को वस्तु कहते हैं, पदार्थ द्रव्य। राग मंद हो के तीव्र जात तो कषाय नीज छे, ये अनंतानुबंधी वाला जो कषाय मतलब जात उसकी अलग ही है, ए जीव नथी। जीव तो तीव्र मंद रागनी संतति थी भिन्न नित्य एक रूप चैतन्य स्वभावमय छे, अने भेद ज्ञानियों एटले राग ने आत्मा नी भिन्नता ने यथार्थपने जाननारा धर्मात्मा जीवो आत्मा ने एवोज अनुभवे छे। आ त्रीजो बोल थियो,
वहां वो बात निकली थी ना, हम ऐसे मिथ्यात्वी नहीं है मंद मिथ्यात्वी है, उसमें थोड़ा
हाँ बोलो बोलो।
डेलस में भी बात निकली थी, वहां प्रवचन में जाते थे ना, तो एक भाई कहते थे यहाँ से हमें तो इतना तो पता है कि हम ऐसे तीव्र मिथ्यात्वी तो नहीं है, हमारा मिथ्यात्व तो मंद है, इतना तो हम लाभ मान सकते हैं।
उनको ऐसा कहना था कि आत्मा के बारे में जो कुछ जानते ही नहीं है वो तो तीव्र मिथ्यात्वी है, उनसे तो हम भले कि कम से कम मंदिर में आते हैं आपकी बात सुनते हैं तो हम तो सम्यक तो सन्मुख हो गए कि नहीं, ऐसा उनका कहना था। देखो उसी में खुश हो गए, तो ये बात क्या बताई यहाँ, यहाँ पर वही बात बता रहे, तीव्र हो के मंद हो राग तो एक ही जात का है, राग कहो कषाय कहो, लेकिन उसमें नहीं नहीं फिर भी एक अपेक्षा से तो हाँ भाई तू अपेक्षा लगा जरूर, लेकिन उसमें अगर तू संतुष्ट रहता है या संतोष समझता है तो भैया तू गलत रास्ते पे है, क्योंकि जैसा बताया ना कि भाई पाप और पुण्य एक ही प्रकार के हैं, फिर भी पाप से तो पुण्य अच्छा कि नहीं ऐसा कहने से कि अरे एक ही प्रकार का है बता रहे ना, लेकिन फिर भी दोनों में अरे दोनों ही एक प्रकार के हैं, चार जन थोड़ी है वहां, तब वो मतलब कहीं ना कहीं उसमें से अपने मन के अनुसार वो ढालना चाहता है तत्व की बातें, अब क्या करें, बताना सो बताएं, अभी आगे जैसा वो माने वो माने, आपने कहने से थोड़ी कोई मानने वाला है। ये आ गया, हम आखिर तक आ गए ना, राग मंदो के तीव्र हो जात कषाय निच्छे। अब आठवां थी त्रण बोल चालिया छे, अब ये चौथो बोल, नवी पुरानी अवस्थादिकना भेदती प्रवर्ततु जे नो कर्म तेपन जीव नथी, कारण के शरीर थी अन्य जुदो चैतन्य स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों वड़े स्वयं उपलब्ध्यमान छे, अर्थात तेवो पोते तेने प्रत्यक्ष अनुभवे छे। अभी ये नो कर्म यानी शरीर के शरीर रूप ही अपने को मानता है, उस शरीर में कोई नवी पुरानी ऐसी अवस्था होती है, मतलब जुदी जुदी अवस्था होती है, और उसमें ये समझता है कि ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है ऐसे जीवों को इस शरीर से जुदा भिन्न ऐसा आत्मा अनुभव में आया हुआ है, इसलिए आपका कहना सही नहीं है। नवी पुरानी अवस्था, रोग निरोगनी अवस्था, बाल युवान वृद्धनी अवस्था, पुष्ट जीर्ण रूप अवस्था इत्यादि अवस्था ना भेदती नो कर्म एटले शरीर प्रवर्ते छे। आहा भाषा तो जो, बाल युवान वृद्धपने के पुष्ट जीर्णपने के रोग अरोगपने आ शरीर जे पुद्गलोनो स्कंद पिंड छे ते परिणमे छे जीव नहीं। શરીરની અવસ્થાનો સ્વતંત્ર જન્મક્ષણ છે, તેથી અવસ્થા રૂપે શરીર સ્વયં પરિણમે છે। એ જો બતા રહે ને કે શરીરની અવસ્થાનો સ્વતંત્ર જન્મક્ષણ છે, યાને જો અવસ્થા યાને જો પર્યાય હૈ વહ સ્વતંત્રપણે યાને દૂસરે કે કારણ ને અપને હી કારણ સે જન્મક્ષણ છે ને ઉસ રૂપ સે પરિણમિત હોતી હૈ। और स्वतंत्र का अर्थ ये हो गया कि दूसरा कोई उसे परिणमावे दे ऐसी बात नहीं है। अब क्या कह रहे, देखो शरीर की अवस्था नो स्वतंत्र जन्मक्षण थे जे ते अवस्था रूपे शरीर स्वयं परिणमे छे, ये बात आ गई ना, यानी दूसरा कोई उसको परिणमाने वाला नहीं है। आ अनेक अवस्थाना भेदती प्रवर्ततु जे शरीर ते जीव नथी, कारण के शरीर थी अन्य जुदो चिदानंद स्वामी जीव चिदानंद स्वभावी जीव भेद ज्ञानियों वड़े प्रत्यक्ष अनुभवाय छे, शरीर ने प्रवर्तावुं એ જીવનો સ્વભાવ નથી। પ્રશ્ન, ઈર્યા સમિતિમાં જોઈને ચાલવું એમ કહ્યું છે ને, ઈર્યા સમિતિમાં જીવ શરીરને ચાલવારૂપ પ્રવર્તાવે છે એમ નથી, પણ એ તો જે તે ભૂમિકામાં શરીર જેમ ચાલે છે તેનું કથન કર્યું છે। અહો, શરીરથી જેમને ભેદદૃષ્ટિ થઈ છે એવા સમકીતી જીવો શરીરથી ભિન્ન એવા ચૈતન્ય સ્વભાવમાં શુદ્ધ આત્માને પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે। દેખો, અગર આપકો યાદ હોગા તો, હા, ઇનકા પ્રશ્ન એસા હૈ કે ઈર્યા સમિતિ કા અર્થ ક્યા, યાને ચાર હાથ જમીન દેખ કર ચલના, યે દેખો યહાં સે લેકે યહાં એક હાથ હો ગયા, એસા ચાર હાથ યાને આજ કે ભાષામાં 6 ફૂટ, यानी हम जब मुनिराज जब चलते हैं, तो मुनिराज जब चलते हैं तो वहाँ यहाँ देखते ऊपर नीचे या किसी के साथ गप्पा मारते ऐसा नहीं चलते हैं, उनका तो पूरा पूरा ध्यान जमीन पर कोई जीव जंतु तो नहीं है कि अपने असावधानी से उनका मरण न आ जाए, इसके लिए वो ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो शरीर को संभालते संभालते चलते हैं ना, तो आप तो कह रहे हैं कि भाई शरीर का कार्य नहीं करता है कोई, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो वो कहते हैं कि ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं, यानी शरीर को संभालते हुए चलते हैं, या शरीर से दूसरे किसी की हिंसा न हो ऐसे सावधानी से चलते हैं, ये कहना भी व्यवहार है। क्योंकि शरीर में और आत्मा में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य भिन्न द्रव्य का कार्य करे ऐसी बात है नहीं। फिर भी ऐसा कहना कि मैंने रोटी बनाई, मैंने खाना खाया, या मैंने पैसा कमाया, ये ऐसी जो कोई बातें हैं, ये कहना व्यवहार ने का कथन है। जहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है ऐसा कहना, ये व्यवहार ने का कथन है। अच्छा है, ऐसा पूछते जाना हो आप। अभी क्या हो गया, मैं अभी चालू प्रवचन में पूछता हूँ सबसे। हो, मुझे ऐसा सजेशन दिया गया है कि आप थोड़ा सा अधिक स्पीडीली चलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है। तो मैं ऐसा पूछता हूँ कि हम बहुत स्लो जाते हैं ऐसा आपको लगता है, तो फास्ट जाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। समझे नहीं समझे वो आपकी बात है, तो हम है उसी स्पीड से चले या थोड़ा सा अधिक चले, आप ही नक्की करके मुझे कल बताना। मैं अभी नहीं कुछ पूछता हूँ, ये आपके बात में मन में बात मैंने छोड़ दी है। चाहिए तो आप लिख के देना, यानी अपना मत दूसरे को पता नहीं लगे। मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं जो आप कहोगे वैसा मानूंगा। चलो लिख के ही देना, आगे बढ़ो। अभी क्या कह रहे हैं, ईर्ष्या समिति यानी क्या, तो ये बात हो गई ना, समझ में आया बेटा। क्या कहते हैं, ईर्ष्या समिति में जीव शरीर ने चालवा रूप प्रवर्तावे छे एम नथी, पण ए तो जे ते भूमिका में शरीर जेम चाले छे तेनु कथन छे। यानी वो मुनि अवस्था में जो उनका जो शरीर होता है वह भी किस रूप से चलता है, ये बातें बताई जाती है। अहो शरीर थी जेमने भेद दृष्टि थई छे, यानी जो शरीर से मैं भिन्न हूँ ऐसा जिनका विश्वास हो गया है, मान्यता हुई है, ऐसे समकीति जीवो शरीर थी भिन्न एवं चैतन्य स्वभाव में शुद्ध आत्मा ने प्रत्यक्ष अनुभवे छे। ऐसे जो मुनिराज है वो जिस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं उसमें शरीर का कुछ भी लेना देना है नहीं, उससे भिन्न ऐसा चैतन्य चमत्कार में आत्मा उन्होंने अनुभव किया है। भाई अभी क्या समझाते, देखो निवृत्ति लेने आनो अभ्यास करवो जोइए। यानी निवृत्ति यानी क्या, जो हमारी दिन भर हो हा प्रवृत्ति चलती है उससे थोड़ा सा हटकर, यानी थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपकी भाषा में अभ्यास करवो जोइए। श्रीमदे कहूं छे के देहनी चिंता करता अनंत गणी चिंता आत्मानी राखजे, केम के आ एक भव माज अनंत भव टाळवा छे। क्या कहते, देखो ये श्रीमद जी बोल रहे हो, आ भव अनंत भव ने टाळवा माटे छे, अनंत भव ने एक भव मां टाळवा ये कोई अलौकिक असाधारण काम छे प्रभु। जो ये काम न करियूं तो माथे अनंत भवो पड़िया छे, वंटोड़ियानु तनखलू क्या जाइने पड़े एनो काई मेल नथी। तेम मिथ्यादृष्टि जीव देह छोड़ीने क्या जशे एनो काई मेल नथी। ये एक दो दिन पहले बात आई थी वंटोड़िया, अरे क्या एक नरक निगो तीर्यंचमा चालियो जशे, तथा जेनी त्रसनी स्थिति पूरी थवा आवी होए तेने जो आ कार्य एटले सम्यक दर्शनादि न करियूं तो ते पण निगोदमां चाल्यो जशे। ये त्रस स्थिति कितनी होती मालूम है ना आपको, आज और एक नई बात मिलेगी। देखो क्या कहते, देखो त्रस अवस्थानी उत्कृष्ट स्थिति 2000 सागर थी कायक अधिक छे, साधिक 2000 सागर कहते ना। और आगे शू कहूं, आ ईयर कीड़ी भमरो ढोर नारकी मनुष्य देव वगैरह में रहेवानी उत्कृष्ट स्थिति 2000 सागर जेटली छे, ए स्थिति पूरी थे नियमती मिथ्या दृष्टि जीव निगोदमा डैश और एकेंद्रिय मां जाय छे। कदाचित पंचेंद्रिय मां रहे तो 1000 सागर रहे। क्या कहा? पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय, ऐसा पंचेंद्रिय ही पर्याय जिसको मिलती जाए उसका टाइम 1000 सागर का है। हाँ सर, पंचेंद्रिय। हाँ, अब वहां क्या कहते, त्रस्त स्थिति में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय जो कभी भी एकेंद्रिय में न जाए, सिर्फ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय फिर इसमें से कहीं भी घूमे तो 2000 सागर त्रस्त की स्थिति। अरे भाई पंचेंद्रिय के अलावा दूसरा कोई होगा ही नहीं ऐसा कह रहे हैं। देखो देखो उत्कृष्ट स्थिति की बात कर रहे हैं कि देखो अभी जरा समझने की कोशिश करो, मैं अलग तरीके से समझाऊंगा। देखो त्रस्त स्थिति, त्रस्त यानी कहां से कहां तक होती है, तो एक के बाद एक ऐसी ही त्रस्त पर्याय मिले, यानी मान लो अभी 2 इंद्रिय है फिर डायरेक्ट 5 इंद्रिय हो गया, फिर 3 इंद्रिय हो गया या 2 इंद्रिय हो गया, जैसा कहीं पर भी घूमे, एक इंद्रिय में नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी उत्कृष्ट स्थिति 2000 साधिक 2000 सागर। अब यहां और एक नई बात ये समझा रहे हैं, वो पहले हमने पढ़ी भी थी लेकिन ध्यान में नहीं रही, अभी मेरे भी ख्याल में आई कि सिर्फ पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय यानी मनुष्य हुआ पंचेंद्रिय, तिरंच हुआ, फिर नारकी हुआ वो भी पंचेंद्रिय, फिर समझो मनुष्य हुआ, फिर वहां से देव हुआ, ऐसा घूमे 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 पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय, तो 1000 सागर वर्ष 1000 सागर वर्ष 1000 सागर वर्ष। देखो नीचे से चौथी पांचवी लाइन है, कदाचित पंचेंद्रिय मां रहे तो 1000 सागर रहे। अभी आपका क्या कहना था? एक हजार वर्ष की, 1000 सागर वर्ष की। हाँ, अरे अधिक से अधिक 33 सागर से कहाँ तुम जाओगे, नरक में जाओगे तो 33 सागर ही मिलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, यानी गणत्री आप बोलते हैं, कुछ नहीं बता सकेंगे। पंचेंद्रिय माता के पेट में आया मर गया, वो तो 1 महीने में मरा, 1 दिन में मरा, वो तो इसके है 2000 सागर वर्ष के। हाँ हाँ, अभी तक कभी पढ़ने में नहीं आया है। हाँ, मेरे पढ़ने में नहीं आया। आप जो पूछ रहे हैं कि ये मनुष्य पर्याय कितनी मिलेगी, तिरंच पर्याय कितनी मिलेगी, ऐसा ऐसा कहीं, वैसे 1000 सागर में कितने मिलेंगे ऐसा पूछ रहे। देखो देखो देखो, मैं अभी थोड़ा कंक्लूजन पर आया हूँ। हमने क्या देखा था, 2000 सागर वर्ष जो है उसमें मनुष्य पर्याय कितने बार मिलेगी, मनुष्य पर्याय कौन से इंद्रिय वाला है, तो 1000 वर्ष में कितने मिलेगी, उतनी ही मिलेगी मैक्सिमम। ख्याल में आया अभी? हाँ, मनुष्य पर्याय की बात ले लो। अरे मनुष्य पंचेंद्रिय होता है मेरे भाई, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में बाकी 1000 सागर घूमेगा, नहीं ख्याल में आए थे हमें? उनका ये कहना है कि मनुष्य पर्याय कितनी बार मिलेगी, ऐसा तो मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मनुष्य की अगर आपको गिनती चाहिए तो उतनी होगी, क्योंकि पंचेंद्रिय तो अन्य में जाने का ही नहीं उसको, ख्याल में। हाँ, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय ऐसे लगातार पंचेंद्रिय पर्याय मिले तो 1000 सागर वर्ष तक ही मिलेगी। देखो फिर से पढ़ना, देखो क्या कह रहे हैं। कदाचित पंचेंद्रिय मां रहे तो 1000 सागर रहे, अने समग्रपणे त्रसमां रहेवानो वधुमां वधु 2000 सागर काळ जेटलो काळ छे। आ काळमां जो सम्यक दर्शनादि प्रकट करे तो अनंत सुखमय सिद्धपद पामे, अने जो न करे तो महादुःखमय निगोद अवस्थाने प्राप्त थाय, त्या अनंत काळ दुःख भोगवे। अभी ये भी बात ध्यान रखना कि सभी जीव को इतना बड़ा काल मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये तो उत्कृष्ट कहने से कभी किसको मिले तो मिले की बात है। भगवान आत्मा, देखो हम कहते हैं ना नरक, नरक में बहुत दुख है, बहुत दुख है। तो पहले नरक में और सातवें नरक में दुख में कोई अंतर होगा ना, इसीलिए तो सात नरक बने हैं। तो यहां क्या समझा रहे हैं कि नरक के जाने योग्य परिणाम जो तुम करोगे उसमें भी तरतमता होगी, वैसे पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय वाले के भी परिणाम उस रूप होंगे। और जो इधर उधर जाने वाले हैं तो दो इंद्रिय में जाएगा तो उसके और संकलिश परिणाम अधिक होंगे। ख्याल में इस तरह से लेना। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु एक चिन्मात्र स्वभावमय छे, ते भेद ज्ञानियों वड़े देहती भिन्नपने स्वयं उपलब्ध्यमान छे। यानी वो भेद ज्ञानियों ने ऐसा ही चिन्मात्र स्वभावमय आत्मा का अनुभव किया है, स्वयं उपलब्ध्यमान छे। एनो अर्थ, एनो शू अर्थ छे के समकितियों ने पोतानी ज्ञाननी दशा थी आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव मां आवे छे, एवो तेनो अर्थ छे। स्वयं उपलब्ध्यमान छे का अर्थ दूसरे किसी के मदद से, दूसरे किसी के सहायता से होता है ऐसा नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान थी आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव मां आवे छे, तेथी देह ते जीव नथी, देह ते भिन्न आत्मा चैतन्य स्वभाव में जुदी वस्तु छे, अनेक अवस्थाओं ना भेद रूप प्रवर्ततु जे शरीर एमा आत्मानो अधिकार छे एम नथी। एना आत्मानो अधिकार यानी आत्मा उसमें कुछ भी नहीं करता है, अधिकार नथी यानी वो मालकी नहीं है ऐसा। इसमें शरीर ने आत्मा बनने भिन्न भिन्न छे। अब फिर रेफरेंसेस दिए हैं, अभी देखना। श्री समय सार का था 96 टीकामां आवे छे के आ शरीर छे ते मृतक कलेवर एटले मर्दू छे। हाँ, अभी एक दफे ऐसा बोला था कि ये शरीर ये मर्दा है, तो वहां बोला अरे शुभ बोलो शुभ बोलो, ऐसा क्या बोलते। अभी इसमें क्या शुभ है, अभी जो है उसको सही बोलना। हाँ, तो ये समयसार में लिखा है, टीका में, टीका का अर्थ क्या हुआ, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। देखो क्या कहते हैं, समय सार गाथा 96 टीका में आवे छे के आ शरीर छे ते मृतक कलेवर एटले मड़दू छे, तेमा अमृत नो सागर एवो भगवान आत्मा मूर्छाई गयो छे। शुद्ध चैतन्य स्वभाव में अमृत नो सागर हूँ छू एन एम अनुभवावने अनुभववाने बदले आ मृतक शरीर हूँ छू, आ शरीर मारू छे एम तू क्या मुरझाई गयो छो। अरे अमृत नो सागर मृतक शरीर मां मुरछायो ए मोटू कलंक छे। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अने अन्य जीव एम छ द्रव्यो छे ते मननो विषय छे। क्या कहा देखो, त्रण लोकना नाथ सर्वज्ञ परमात्मा पण मननो विषय छे, तेथी बीजी रीते कहिए तो सर्वज्ञ परमात्मा पण इंद्रिय छे। ये समझ में आया? हाँ, इंद्रियों नो विषय छे ये बात नहीं है, उसको डायरेक्ट इंद्रिय ही कहा है, ख्याल में? यानी जो इंद्रियों के माध्यम से जो जाना जाता है वह तो इंद्रियों के विषय है, लेकिन इंद्रियों के विषयों को ही इंद्रिय कहा गया है। देखो फिर से, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ने अन्य जीव एम छ द्रव्यो छे ते मन नो विषय छे। अब ये मन की बात ले रहे हैं, त्रण लोकना नाथ सर्वज्ञ परमात्मा पण मन नो विषय छे। तेथी बीजी रीते कहिए तो सर्वज्ञ परमात्मा पण इंद्रिय छे। ये बात आगे आने वाली, इंद्रिय के जो बात कहते हैं ना, हाँ उसमें आ गई थी। हाँ, इंद्रिय भूत विषय, उसको भी इंद्रिय कहा गया। अब आगे, तेथी बीजी रीते कहिए तो सर्वज्ञ परमात्मा इंद्रिय छे। अंदर खंड खंड ज्ञान जे थई रह्यू छे, एक मिनिट, हाँ कहा गया, अंदर खंड खंड ज्ञान जे थई रह्यू छे ते पण भावेन्द्रिय छे। भावेन्द्रिय खंड खंड ज्ञान ने जणावे छे, ज्यारे आत्मा चैतन्य स्वरूप अखंड छे, तेथी खंड खंड ज्ञान ने जणावती भावेन्द्रिय अखंड आत्मा थी भिन्न पर वस्तु छे, ज्ञेय छे। ये जो अभी आपने इसमें देखा था ना प्रवचन सार में, यही विषय आया था। एक रीते तो ते भावेन्द्रिय ने पुद्गल ना परिणाम कया छे, ये दृष्टि के विषय से भावेन्द्रिय ने हो, केम के क्षोभम भाव ए आत्मानो स्वभाव नथी। श्री समयसार गाथा 49 नी टीका में कहूं छे के, अभी 4-5 गाथा के बाद आएगा, के क्षोभम भाव ए जीवनो स्वभाव नथी। स्वभाव दृष्टि थी जोता क्षोभम भावनो तेमा अभाव छे। अहो वस्तुनु स्वरूप अति सूक्ष्म अने गंभीर छे। लोकोने बाहरनी एटले क्रियाकांडनी प्रवृत्ति आड़े अंतर वस्तु शुं छे अने अंदरमा वस्तु शुं छे ते शोधवानी दरकार नथी। क्या कह रहे हैं, क्रियाकांड में जो अटके हुए हैं वो कहते हैं ध्यान करने से क्या होने वाला है, ध्यान करने से क्या फायदा है, उससे क्या मिलता है, हम कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, बोएंगे तो उगेगा, कहते नहीं तो क्या है। अभी उनका कथन समझन अलग अलग है। समय सार गाथा 50-55 में आवश्यक के शब्दों वाणी शरीर इंद्रिय मन ए बधा जे नौकर्म छे एना थी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा भिन्न छे। अनुभूति स्वरूप यानी जो अनुभव में आ रहा है ऐसा जो भगवान आत्मा है। शरीर थी जुदो छू एम धारणा में लीधु होय पन एवो भिन्न चैतन्य स्वभाव में आत्मा नो प्रत्यक्ष अनुभव करवो जोइए। क्या कहते हैं, पहले से ज्ञान में तो हमारे तुम्हारे सबके हैं, क्या शरीर से जुदा मैं हूं ऐसा धारणा में लीधु हो, यानी ज्ञान में तो है पण एवो भिन्न चैतन्य स्वभाव में आत्मानो प्रत्यक्ष अनुभव करवो जोइए। सिर्फ देखो स्वामी जी बहुत बार कहते हैं कि मैं न्यायक छू, मैं हूँ न्यायक छू, हूँ न्यायक छू, एवो धर्मी जीव घोकतो नथी, यानी उसको याद नहीं करना पड़ता है। और हम भी जब अनुभव करने को बैठते हैं सब अभी, तो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, तो कहते ये घोकने की क्या जरूरत, तो है ही ना, ख्याल में है ना, तो वो तो मानने की बात है तब अनुभव होगा। क्या कहते हैं, ए वो भिन्न चैतन्य स्वभाव आत्मा नो प्रत्यक्ष अनुभव करवो जोइए। वेद ज्ञानीओ देहती भिन्न शुद्ध चिदानंदमय आत्मा ने प्रत्यक्ष अनुभवे छे। अब पांचवा बोल, समस्त जगत ने पुण्य पाप रूपे व्याप्तो कर्मनो विपाक छे, ते पण जीव नथी, कारण के शुभाशुभ भाव थी। अभी वहां शरीर को लिया, यहां पुण्य पाप के परिणाम को लिया है। जगत ने पुण्य पाप रूपे व्याप्तो कर्मनो विपाक, यानी कर्म का जो फल है, ते पण जीव नथी, कारण के शुभाशुभ भाव थी। अन्य जुदो चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानी वड़े उपलब्धमान छे, अर्थात तेवो पोते तेने प्रत्यक्ष अनुभवे छे। जगतना सगड़ा संसारियों ने पुण्यपाप रूपे कर्मनो विपाक व्यापेलो छे, तेवो पुण्यपाप ने जीव कहे छे। ये खोटी मान्यता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात तेवो पोते तेने प्रत्यक्ष अनुभवे छे। जगतना सगड़ा संसारियों ने पुण्यपाप रूपे कर्मनो विपाक व्यापेलो छे, तेवो पुण्यपाप ने जीव कहे छे। आई कहे छे के पुण्यपाप छे ए कर्मनो विपाक छे, ए आत्मा नथी। देखो एक दफे आपको ये भी याद होगा कि पुण्य और पाप जो है ना, वो प्रकृतियां होती है, कर्म प्रकृतियां, जीव के परिणाम नहीं होते। लेकिन जिस भाव से ऐसे कर्म प्रकृतियां बांधी जाती है, तो उन भाव को भी पुण्य भाव और पाप भाव कहने में आता है। वास्तविक ये कर्म है ना, अभी बता रहे ना यहाँ। देखो सेकंड लाइन में और पहले भी लाइन में, पुण्य पाप रूपे कर्मनो विपाक व्यापेलो छे, कोने? संसारी जीवों ने। आई कहे छे सेकंड लाइन में के पुण्य पाप छे ए कर्मनो विपाक छे, ए आत्मा नथी। श्री समयसार कलश टीका, कलश 189 ना, क्या है? हाँ 189 में लीधु छे के पठन पाठन सांभळवू, चिंतन करवू, स्तुति वंदना, ए सगळो जे क्रियाकलाप छे ते विकल्प छे, राग छे। हजु जेने पठन पाठन नी नवराश नथी, एनी तो वात ज शुं करवी? अने एने तो आत्मा शुभाशुभ भावथी रहित शुद्ध चैतन्य धातु छे, ए बेसी शकतुज नथी। भाई हिंसा झूठ चोरी कुशीलादी पापना भाव तो झेर छेज, पण आ पठन पाठन श्रवण चिंतवन स्तुति वंदना आदि शुभ भाव छे, ते पण झेरनो घड़ो छे, ते कई अमृत स्वरूप आत्मा नथी। ये आगे आने वाली बात, जेने आत्माना आनंदनो अनुभव होय, तेना शुभ भाव ने आरोप थी अमृत कहवाय छे। ये उसको उपमा देके बताया ना, आरोप किया उसके ऊपर। त्रिकाल ध्रुव अखंड एक चैतन्य स्वरूप ना अवलंबने जे निश्चय धर्म प्रकट्यो छे, तेज खरेखर अमृत छे। पण ते धर्मनो शुभ भाव पर आरोप करीने शुभ भाव ने पण अमृत कहो छे, पण छे तो खरेखर ए झेर। यानी उपचार से उसको भी मोक्ष मार्ग कहने में आता है ना, किसको? राग को। फिर भी कहते वो सच्चा अमृत जैसा है ही नहीं, वो तो झेर है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कौन होता है, अमृत या झेर? अरे जगत ने सत्य सांभळवा मळे नहीं, ए बिचारा क्या जशे? लाखों रुपयाना दान आपे, त्या दान देवानो जे भाव छे ते पुण्य छे, एनाथी कहीं जन्म मरण न मटे, अने एने धर्म माने तो मिथ्या दर्शन छे। पैसा तो अजीव छे, जीव काई ए अजीवनो स्वामी नथी, पैसा मारा छे एम माननारे पोताने अजीव मान्यो छे। भाई पैसा पैदा करवा, एने साचववा अने वापरवा, ए कई आत्मानी क्रिया नथी। तथा दान आपवानो जे शुभ भाव छे ते राग छे, संसार छे, શુભ ભાવ કે જે સંસારમાં પ્રવેશ કરાવે તેને ભલો કેમ કહીએ? દેખો સ્વામીજી કહેતે હૈ કે જો સંસાર મેં રુલાવે વહ ભાવ અચ્છા કૈસા કહે સકતે હૈ આપ, યાને યે શુભ રાગ જો હૈ ઉસસે તો જન્મ મરણ કે ફેરે મેં અટકના હૈ, ઇસલે કહે રહે સંસારમાં પ્રવેશ કરાવે તેને ભલો કેમ કહીએ? પુણ્ય પાપના ભાવ એ તો કર્મનો વિપાક છે, એ કઈ ભગવાન આત્માનો વિપાક નથી. વિપાક એને ઉસકા ફલ, પુણ્ય પાપનો જે કરતા થાય એ જીવ નહીં. જીવ તો નિર્મળ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ છે, એ જ્ઞાનનો કરતા થાય. જીવ વિકારનો કરતા થાય એમ માનનારી પોતાને આખોય વિકારી બાણીઓ છે. પણ ભાઈ, વસ્તુ આત્મા તો વિકારથી રહિત ચિન્હ માત્ર છે, વસ્તુ તત્વ બહુ સૂક્ષ્મ છે. બાપુ, જન્મ મરણના દુઃખોથી મુક્ત થવાનો ઉપાય અતિ આકરો અને ઝીણો છે. આ લસણ અને ડુંગળીમાં જે નિગોદના જીવો છે એમને પણ શુભ શુભ ભાવો તો હોય છે. ક્ષણમાં શુભ અને ક્ષણમાં અશુભ ભાવ આવે છે, એમને પણ શુભાશુભ કર્મધારા નિરંતર ચાલ્યા કરે છે. ભાઈ, એ તો બધો કર્મનો વિપાક છે, એ જડનું ફળ છે, એ કંઈ ચૈતન્યનું ફળ નથી. ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તો પુણ્ય પાપરૂપ કર્મના વિપાકથી ભિન્ન છે એમ સર્વજ્ઞ દેવે કહ્યું છે. એને એ આગમ હો ગયા, યુક્તિથી પણ એમ જ સિદ્ધ થાય છે. અને ભેદજ્ઞાનીઓ વડે પણ શુભાશુભ ભાવથી ભિન્ન જુદો ચૈતન્ય સ્વભાવમાં આત્મા પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. ડુંગળી અને પ્યાસ કાંદા છઠ્ઠો બોલ. શાતા અશાતા રૂપે વ્યાપ્ત જે સમસ્ત તીવ્ર મંદપણા રૂપ ગુણો તે વડે ભેદરૂપ થતો જે કર્મનો અનુભવ તે પણ જીવ નથી. એ ક્યાં કહે રહે? એ જો ગુણો જો લિખાય ને, એ હમને પરસો દેખા તા, એ તો અનુભવ જો હૈ ને તીવ્ર મંદપણા રૂપ ગુણો તે વડે ભેદરૂપ થતો જે કર્મનો અનુભવ, યાને શાતા મેં જુદા પ્રકાર કા અનુભવ હૈ, અસાતા મેં જુદા પ્રકાર કા અનુભવ હૈ. કભી તીવ્ર અસાતા હોગા, કભી તીવ્ર સાતા હોગા. તો વો જો કોઈ અનુભવ હૈ, યહાં તો પર્યાય લેના ચાહીએ. ગુણો જો લિખા ને ઉસકા અર્થ પર્યાય લેના ચાહીએ. દેખો, તે કર્મનો અનુભવ તે પણ જીવ નથી. શાતાનું વેદન એટલે કલ્પનામાં જે અનુકૂળપણે સુખરૂપ લાગે, અને અશાતાનું વેદન એટલે કલ્પનામાં જે પ્રતિકૂળપણે દુઃખરૂપ લાગે, એવા ભેદરૂપ જે કર્મનો અનુભવ તે જીવ નથી. અભી યહાં પર એક વાત ધ્યાન રખના કે જો પરપદાર્થ જો હૈ વે સાતા રૂપ હૈ યા અસાતા રૂપ હૈ એસી બાત નહીં હૈ. પદાર્થો મેં સાતા અસાતા કુછ નહીં હોતા હૈ, લેકિન ઉસ પદાર્થ કે કારણ સે અપને મેં ઉસકે પ્રતિ અનુકૂળ પરિણામ યાને રાગ, યા પ્રતિકૂળ પરિણામ યાને દ્વેષ, ઉસકો ઉસકા જો વેદન હૈ ઉસકો સાતા કા વેદન યા અસાતા કા વેદન કહે. અભી હમ દેખતે હૈ કે યહાં પંખા લગા હુઆ હૈ તો કિસી કો તો અચ્છા લગે પંખા, હા સાતા લગે ભાઈ કુછ તકલીફ નહીં. લેકિન જો નીચે બેઠતે હૈ અરે ઉનકો તો કભી બંધ હોતા હૈ, દિમાગ ઘૂમ રહે, તો વહી પંખે કો ઉનકે લે વો અશાતા હૈ. ખ્યાલ મેં? પંખા તો પંખા હી હૈ, તો ઉસમે અનુકૂળતા પ્રતિકૂળતા માને તો પ્રતિકૂળતા માનને વાલે કા અશાતા કર્મ કા ઉદય હૈ કહેંગે, ઓર જિસકે અનુકૂળ લગતા હૈ ઉસકે સાતા કા ઉદય. અબ દેખો ફિર સે પઢના સેકન્ડ લાઈન. શાતાનું વેદન એટલે કલ્પનામાં જે અનુકૂળપણે સુખરૂપ લાગે, એ લાગને વાળા કિસકા પરિણામ હે? જીવ કહે ને. અને અશાતાનું વેદન એટલે કલ્પનામાં જે પ્રતિકૂળપણે દુઃખરૂપ લાગે એવા ભેદરૂપ જે કર્મનો અનુભવ તે જીવ નથી. શરીર તો રોગની મૂર્તિ છે. એક તસુમાં એટલે તસુ જેટલા શરીરના ભાગમાં 96 રોગ શરીરમાં છે. તસુ એને ઇતના હોતા ને, કેટલા તસુ એને કેટલા હોતા, ગુજરાતી શબ્દ ને તસુ, હા અણી જીતના, હા અચ્છા તસુ એને બહુ છોટે મેં છોટા 96 રોગ શરીરમાં છે. એવા આખાય શરીરના શરીરમાં રોગ ભરેલા છે. એ રોગ જ્યારે પ્રકટ થાય ત્યારે જે અશાતાનું વેદન થાય એ પૂતગલનું ફળ છે. તથા શરીર નિરોગી રહે અને બહાર સામગ્રી ધન સંપત્તિ કુટુંબ પરિવાર આદિ ઠીક અનુકૂળ હોય ત્યારે જે શાતાનું એટલે સુખની કલ્પનાનું વેદન થાય એ પણ પૂતગલનું ફળ છે. એ કલ્પનામાં સુખ દુઃખના વેદનમાં કર્મનો અનુભવ છે. આત્માનો નહીં, શરીર હૃષ્ટપુષ્ટ નિરોગી હોય અને કરોડોની સાહેબી હોય, સાહેબી એટલે માલિકી, ત્યારે જે સુખનો અનુભવ થાય તે કર્મનો અનુભવ છે, આત્માનો નહીં. એ સુખ દુઃખમાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા નથી, એ શાતા અશાતાનો અનુભવ એ આત્મા નથી. આત્મા તો સુખ દુઃખથી ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વભાવમય વસ્તુ છે. એક ધર્મી સિવાય આખું જગત પાગલ છે, ઘેલું છે. યાને આખું જગત, યાને જો મિથ્યા દ્રષ્ટિએ ઉનકી બાત કર રહે કે ધર્મી કે અગેન્સ્ટ કોણ હોગા, અધર્મી મિથ્યા દ્રષ્ટિ અજ્ઞાની, કારણ કે તે દુઃખને સુખ માને છે. ક્યા કહા, યાને એ દુઃખ જો સુખ જિસકો હમ કહે રહે હૈ વો તો દુઃખ હી હૈ. નહીં સમજ મે, જિસકો હમ લૌકિક સુખ કહેતે હૈ કે ભાઈ હમે ઇતના પૈસા હૈ, હમારે યે અનુકૂળતા હૈ, યે હૈ, યે હૈ સબ, તો વો હૈ તો વહ દુઃખ ઓર ઉસકો વહ સુખ માનતા હૈ. ક્યા કહે રહે દેખો, હા હા, કારણ કે દુઃખને સુખ માને છે. અભી હમ થોડા સા એસા વિચાર કરતે હૈ, અભી માન લેતે હૈ હમ કે આપણે યહાં પર આને વાલે સભી મુમુક્ષુ જિનકે પાસ અબજો કી સંપત્તિ હૈ તો વો સુખી માનતે હૈ ના અપને કો, ખ્યાલ મેં. તો મેં પૂછતા હું, ચક્રવર્તી કે પાસ જીતની સંપદા હોગી ઉતની તો અપને પાસ હૈ નહીં ને, હા, તો વો કિતને સુખી હોંગે. ઓર એસા સુખ છોડકર નગ્ન દિગંબર સાધુ બનકર જો આત્મા કા અનુભવ કરતે હુએ કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરકે સિદ્ધ શિલા પહોંચે હૈ તો વો પાગલ ક્યા હમ. ક્યા કહા, દેખો દેખો, એક ધર્મી સિવાય, યાને જો ધર્મી નહીં હૈ વે કૈસે હૈ, પાગલ છે. આખું જગત ઘેલું છે, ઘેલું કા અર્થ હૈ વહી હૈ ગાંડો, ઘેલું યાને, કારણ કે તે દુઃખને સુખ માને છે. જે સુખ નથી તેને સુખ માને છે. રંકતી માંડીને મોટો રાજા અને એકેન્દ્રિયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય સુધીના સૌ જીવો સુખ દુઃખની કલ્પનામાં રાચી રહ્યા છે, મગ્ન થઈ રહ્યા છે. એ સગળી પાગલોની નાત છે. નાત કહો જાત કહો એક હે, પરંતુ સુખ દુઃખની કલ્પનાથી ભિન્ન પડી અનંત સુખનું ધામ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવમય વસ્તુ એ માં દ્રષ્ટિ કરે તો સ્વયં અર્થાત પ્રત્યક્ષ આનંદનો અનુભવ થાય છે. આહાહા, સુખ દુઃખથી જુદો અન્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ જીવ છે એમ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. કેવડીને જ પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ નહીં. ઇસકા અર્થ ક્યાં લેના? જો ચતુર્થ ગુણ સ્થાન વર્તી જીવ હૈ ઉસકે ભી પ્રત્યક્ષ અનુભવ હૈ અપને સ્વતા. યહાં તો સમજા રહે હૈ, પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે કેવડીને જ પ્રત્યક્ષ થાય છે એમ નહીં. ચોથા ગુણ સ્થાને પણ સ્વસંવેદનથી આત્મા પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. સમ્યક દર્શન થતા વેદજ્ઞાનીઓને મતિશુદ્ધ જ્ઞાનથી આત્મા પ્રત્યક્ષ વેદનમાં આવે છે. પ્રથમ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન હોવા જોઈએ. આત્મા વસ્તુ સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ થઈ ન હોય અને વ્રત નિયમ અને સંયમમાં લાગી જાય તો એ સગળી ક્રિયા એકડા વિનાના મીંડા જેવી છે. એ એકડા વિનાના મીંડા સમજમાં આવ્યા? એ ગુજરાતી હૈ ને, ઇસને આપસે પૂછ રહા હું. હા, યાને નિરર્થક હૈ ઇન શોર્ટ. ઇસસે કોઈ મોક્ષ માર્ગ મેં આગે બઢને જેસી કોઈ બાત નહીં હૈ. એવા જીવો ક્રિયાના અભિમાનમાં ચડી જાય છે. વળી કહે છે કે અશુભ કરતા તો શુભ સારું છે. પણ ભાઈ, એ તો વ્યવહારથી એમ કહેવાય. નિશ્ચયથી તો શુભ ભાવ પણ ઝેર છે. જે સંસારમાં દાખલ કરે તેને સારો કેમ કહેવાય? હવે સાતમો બોલ કહે છે, શિખંડની જેમ ઉભયાત્મકપણે મળેલા જે આત્મા અને કર્મ તે બંને મળેલા પણ જીવ નથી. જેમ દહીં અને સાકર બે મળીને શિખંડ છે તેમ આત્મા અને કર્મ એ બે થઈને જીવ છે. એસી જો માન્યતા હૈ વો યહાં કહે રહે એમ નથી. ભગવાન આત્મા તો ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રભુ છે અને રાગ અને કર્મ વગેરે તો જડ અચેતન સ્વરૂપ છે. તેથી જીવ અને કર્મ બંને ભિન્ન ભિન્ન છે. પરંતુ જેમ હાથી ચૂરમું અને ઘાસ બંનેને ભેગા કરીને ખાય છે તેમ અજ્ઞાની કર્મ અને આત્માને એક કરીને અનુભવે છે. એ ક્યા હોતા હૈ? જો હાથી હોતા હૈ ઉસકો સિર્ફ ઘાસ દેને સે કભી કભી વો નહીં ખાતા હૈ તો ઉસકે અંદર યે ચૂરમા કા લડ્ડુ છોડ દેતે હૈ તો વો ચૂરમા ક્યા હૈ ઓર લડ્ડુ ક્યા હૈ યે નહીં સમજતે હુએ ઘાસ હી મીઠા હૈ એસા માનકર ખા લેતા હૈ. વૈસા યે જીવ કર્મ કો ઓર આત્મા કો એક ગિનકર વો ઉસકા અનુભવ કરતા હૈ કે મેને મેં યહી હું. કોઈ પુરુષ સ્ત્રી સાથે વિષય ભોગ કરે છે ત્યાં ખરેખર એ સ્ત્રીના શરીરને ભોગવતો અનુભવતો નથી. શરીર તો જડ અજીવ છે, માંસ હાડ અને ચામડાની થેલી છે. જ્યારે ભગવાન આત્મા તો અંદર સ્પર્શાદી રહિત અને સ્પર્શરસગંધવર્ણ ઇનસે રહિત શુદ્ધ ચિદ્રૂપ વસ્તુ છે. ભોગ કાળે એને આ ઠીક છે એવો જે રાગ થાય તે રાગને અનુભવે છે. ત્યાં આત્મા અને રાગ ભેગા છે એમ નથી. પણ અજ્ઞાનવશ એમ માને છે કે આને એટલે રાગને હું ભોગવું છું. દેખો ઉદાહરણ કૈસા દિયા હૈ, જેમ કૂતરું હાડકું ચાવે ત્યારે હાડકાની કણી દાડમાં વાગે ત્યારે ત્યાંથી લોહી નીકળે. એ લોહીનો સ્વાદ આવતા તે હાડકાનો સ્વાદ આવે છે તેમ તે માને છે. દેખો યહાં યે જો અજ્ઞાની જીવ હૈ જો પર પદાર્થ સે મુઝે સુખ મિલતા હૈ એસા માનતા હૈ યાને ભોજન કરને સે બહોત બડા સ્વાદ અચ્છા આયા તો કુત્તે કે જૈસા હૈ બોલતા હૈ. તેમ શરીર તો હાડ માંસ ચામડું અને વિષ્ઠાથી ભરેલું છે એનો સ્પર્શ થતા એ ઠીક છે એવો એને રાગ થાય છે. એ રાગને તે અનુભવે છે, પણ શરીરને હું ભોગવું છું એમ મિથ્યા માને છે. તેવી જ રીતે સર્પદંશ થયો હોય તો તે દંશને ભોગવે છે એમ નથી, પણ તે વખતે તેના લક્ષ્ય જે અણગમાનું બરાબર દ્વેષભાવ થાય છે તે દ્વેષને અનુભવે છે. અહીં તો એમ કહે છે કે એ રાગદ્વેષરૂપ વિકારી ભાવ અને આત્મા એ બે મળીને જીવ છે એમ નથી, બે ભોગવે એમ નહીં. આત્મા વિકારથી જુદો છે એ અનુભવ સિદ્ધ છે, કેમ કે સમસ્તપણે કર્મથી જુદો અન્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા વેદજ્ઞાનીઓ વડે પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. વેદજ્ઞાનીઓને આનંદના વેદનવાળો આત્મા પ્રત્યક્ષ છે. આઠમો બોલ. હા, અનગમો મંજે ન આવડને, પસંદ નહીં આના. ગમના ગમે છે એટલે ભાવે છે, અચ્છા લગના. ઔર અનગમો એને અચ્છા નહીં લગના. એ હમ મરાઠી મેં કહેતે ના આવડતી નાવડતી, હા વો નાવડ મેં. રાની દો પ્રકાર કી હોતી હૈ, પહેલે કે રાજાઓ કે પાસ બહુ રાણી હોતી હતી, એક આવડતી ઓર એક નાવડતી, યાની એક ગમતી ઓર એક અણગમતી. એસે એ અણગમણો. દેખો હમે કોઈ પસંદ ચીજ પસંદ નહીં હૈ તો દ્વેષ હોતા હૈ, હા, તો અન્નગમનો દ્વેષભાવ થાય છે, અને ગમતી હોય વસ્તુ એના પ્રતિ રાગ થાય છે. બસ એ જ વાત છે. તો આ તો કહી રહે કે દ્વેષભાવ થાય છે તે દ્વેષને જ અનુભવે છે. યાની યહાં તો એ સમજાતે હૈ કે હમને લડ્ડુ ખાયા તો લડ્ડુ બહોત નરમ થા, બહોત મીઠા થા ઓર હમે પસંદ આયા. તો એ વાસ્તવ મેં દેખો ઇસ લડ્ડુ કો તો ઇસ જીવને સ્પર્શ હી નહીં કિયે, તો ફિર ઉસકા સ્વાદ તો આયા ના હમકો, મીઠા થા ના. પહેલે ખાયા તો મીઠા નહીં લગા, તો હમને ઓર ઉસમે શક્કર ડાલને કે લિયે બોલ કે ઉસકો ઓર યે કર દિયા, તો અભી તો મીઠા હો ગયા. તો હમ એસા હી માનતે કે વો ખાને સે મુઝે જ્ઞાન હુઆ હૈ, લેકિન ઉસ વક્ત એસા હી હોતા હૈ કે હમ वो खाने के परिणाम करे उसी समय ज्ञान का भी कार्य चल रहा है ना, और चारित्र गुण का भी कार्य चल रहा है. उसको वाह वाह कितना अच्छा कितना अच्छा, उसके प्रति राग करे और यहाँ ज्ञान जाने की ये मीठा है और वो वस्तु वैसी ही रहे ना, ये तीनों बातें एक साथ चलती है. तो हम ऐसा ही मानते कि वो खाने से मुझे स्वाद आया. ख्याल में अभी देखो माता बहने रसोई बनाती हैं તો કભી કભી શાક મે નમક અધિક ગીર જતા હૈ, તબ ખાને કો જાઓ તો પહેલે તો અરે ઇતના નમક એસા લગતા હૈ. તો એ અંદર નમક અધિક હુઆ ઇસલિયે હમકો જ્ઞાન હુઆ ના, ક્યું બેન બોલો બોલો, નમક જાસ્તી થા ઇસલિયે જ્ઞાન હુઆ કે નહીં? ऐसा मानोगे तो पर से ज्ञान हो गया, ऐसा हो गया. अरे उस समय ज्ञान की पर्याय ऐसी होनी थी, उस समय द्वेष रूप परिणाम चारित्र गुण का होना था और नमक आदि गिरना था, ऐसा समझ लो. ये सब ऐसी इतनी मतलब एक दूसरे से लगी हुई बात है, उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसा अलग अलग करके देखेंगे तो आराम से समझ में आता है. कहीं ना कहीं अपनी ऐसी मान्यता छुपी हुई कि वो नमक जास्ती डाला था इसलिए मुझे द्वेष हुआ, नहीं तो मैं कभी रोज खाते वक्त द्वेष करता हूं क्या? तुमने क्यों नमक जास्ती डाला? यानी तेरे द्वेष के परिणाम पर के कारण होते हैं ये नक्की हो गया और तू नंबड़ो थी गयो. दूसरे के कारण तेरे में राग द्वेष हो रहे तो तेरा मोक्ष भी दूसरे के हाथ में होगा. ये बिल्कुल मतलब ऐसा उसको जुदा जुदा करके समझेंगे तो ये सारी बातें अपने ख्याल में आ जाएगी. હા બોલો મિલી ભાઈ, ક્યાં કહેના ચાહતે આપ? કુછ નહીં, આપસ મેં હી હૈ. ચલો ઠીક હૈ, जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकन मो सदा देत हो। प्रेरणा